स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 15 नवंबर और दिन मंगलवार। ओबामा ने अमेरिका के सहयोगियों को दिलाया विश्वास, ट्रंप करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सम्मान।
In my conversation with the president elect, he expressed a great interest in
नोट बंद करने के फैसले पर एकजुटता के प्रयास में विपक्षी पार्टियां। झारखंड राज्य स्थापना के 16 साल पूरे होने पर करेंगे एक विश्लेषण।
16 साल पूरा होने जा रहा है, झारखंड बना हुआ, किसान आज भी लंगोटी पहन के खेत में काम कर रहा है, लेकिन जबरदस्त तरक्की हुई है नेताओं की और अधिकारियों की।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों का सम्मान करेंगे। राष्ट्रपति के तौर पर अपने आखिरी विदेश दौरे पर रवाना होने के पहले ओबामा ने सहयोगी देशों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी कि ट्रंप ने नेटो के लिए प्रतिबद्धता को जारी रखने में दिलचस्पी दिखाई है। ओबामा ने कहा कि अमरीका को दुनिया के लिए शक्ति का स्रोत और उम्मीद की मशाल बने रहना चाहिए। अमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप के कार्यालय ने जानकारी दी है कि उन्होंने रूस के साथ मजबूत और स्थायी साझेदारी कायम करने की इच्छा जाहिर की। वहीं रूस के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच बराबरी के आधार पर संबंधों को सामान्य करने पर सहमति बनी है। जलवायु परिवर्तन को लेकर अमेरिका के विशेष दूत जोनाथन पर्शिंग ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के पैकेज में दीर्घकालीन विकास की भी जगह होनी चाहिए। मरकेश में आयोजित एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बीते साल अमेरिका को बाढ़, तूफान और सूखे का सामना करना पड़ा। उन्होंने चेतावनी दी कि आगे भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। उन्होंने कहा,
For me, it's not so much the individual institution, it's the question of the damages that we're trying to avoid. It's a question of how we collectively as a
ये मेरे लिए एक संस्थान की बात नहीं है, ये सवाल उस नुकसान को लेकर है जिससे हम बचना चाह रहे हैं। सवाल यह है कि हम वैश्विक समुदाय के तौर पर सामूहिक रूप से अगला कदम कैसे उठाते हैं। मैं मानता हूं कि अमेरिका का आर्थिक समुदाय, व्यापारिक समुदाय, सरकार, स्थानीय निकाय और सिविल सोसाइटी इस दिशा में आगे बढ़ेंगी। ये थे जोनाथन पर्शिंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की एक प्राथमिक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि जांच से मिले सबूतों से लगता है कि साल 2003 और 2004 के बीच अफगानिस्तान में अमरीकी सेना और CIA युद्ध अपराधों में शामिल रहे हों। ये रिपोर्ट मुख्य अभियोजक फाटू बेंसुडा ने तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध बंदियों के साथ उत्पीड़न, बलात्कार और गलत व्यवहार से जुड़े सबूत सामने आए हैं। इनमें से कुछ कथित अपराध CIA के खुफिया हिरासत केंद्रों से जुड़े बताए जाते हैं। अमेरिका ने अभी इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। इराकी शहर फलूजा में हुए दो आत्मघाती बम धमाकों में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। इन हमलों में 25 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। हमलावरों ने शहर के बीचों बीच दो चेकपोस्टों पर तैनात सेना के जवानों को निशाना बनाया। सरकारी सेना ने जून में फलूजा को इस्लामिक स्टेट से अपने अधिकार में लिया था, उसके बाद से ये पहला हमला है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है नवंबर की 15 तारीख और दिन मंगलवार। कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका के सहयोगियों को आश्वस्त किया है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का सम्मान करेंगे। ओबामा के मुताबिक ट्रंप ने नेटो को लेकर अमेरिका की प्रतिबद्धता के प्रति दिलचस्पी जाहिर की है। वहीं यूरोपीय संघ के देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने पर भी सहमति बन गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप से फोन पर बातचीत की और दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में काम करने पर चर्चा हुई। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुनिए वात्सल्य राय से।
राष्ट्रपति के रूप में अपने आखिरी विदेश दौरे पर रवाना होने से पहले बराक ओबामा ने सहयोगी देशों की उन चिंताओं को दूर करने की कोशिश की जो डोनाल्ड ट्रंप के निर्वाचित होने के बाद सामने आई हैं। ओबामा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देशों के बीच साझेदारियां राष्ट्रपतियों के कार्यकाल से आगे जाती हैं। राजनयिक, सेना और खुफिया अधिकारी अमरीका के सहयोगियों के साथ साझेदारी में काम करते रहेंगे। ओबामा ने कहा कि ट्रंप नेटो के लिए प्रतिबद्धता बरकरार रखने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। बीते मंगलवार को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन पर जीत दर्ज करने वाले ट्रंप ने चुनाव अभियान के दौरान नेटो को लेकर संशय भरा रुख दिखाया था। ट्रंप का कहना था कि नेटो पुराना पड़ चुका है। इन चिंताओं के बीच ग्रीस रवाना होने से पहले बराक ओबामा ने कहा,
In my conversation with the president elect, he expressed a great interest in...
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के साथ मेरी बातचीत के दौरान उन्होंने हमारी रणनीतिक साझेदारी को बरकरार रखने में गहरी दिलचस्पी दिखाई, इसलिए मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि वे नेटो के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे लगता है कि इस दौरे के दौरान मेरी ओर से ये जानकारी देना अहम होगा कि मजबूत नेटो को लेकर अमेरिका की प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आई है। अमेरिका मानता है कि यह गठबंधन सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी अच्छा है और ये दुनिया के लिए अहम है। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। ओबामा ने ट्रंप को भी मशविरा दिया कि वो बोलने के पहले सावधान रहें। उधर ब्रसल्स में यूरोपीय संघ के देशों के बीच एक साझा रक्षा योजना तैयार करने पर सहमति बनी है जिसके जरिए सुरक्षा से जुड़े संकटों के दौरान ज्यादा तेजी के साथ कार्रवाई हो सकेगी। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख फेडरिका मोगेरिनी ने कहा कि इस कदम से यूरोप अपनी सुरक्षा चिंताओं का ख्याल रख सकेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का अर्थ यूरोपीय सेना या फिर सेना मुख्यालय बनाना नहीं है। यूरोपीय संघ का इरादा नेटो से मुकाबले का भी नहीं है। उन्होंने कहा,
This may be the first time in decades that across the Atlantic a strengthening
कई दशकों में पहली बार यूरोपीय संघ की रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करने वाली प्रक्रिया को नेटो से मुकाबला करते हुए नहीं देखा जा रहा है बल्कि इसे नेटो को मजबूती देने वाले तरीके के तौर पर देखा जा रहा है। यूरोप के लिए जरूरी है कि वो अपने बारे में सोचे। ये थे फेडरिका मोगेरिनी के शब्द। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले का ट्रंप के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। इस प्रस्ताव पर बीते साल पेरिस में हुए हमले के बाद से ही विचार किया जा रहा था। उधर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप और पुतिन के बीच सीरिया और दोनों देशों के हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। रूस के मुताबिक दोनों नेताओं ने कहा है कि वो रूस अमेरिका संबंधों को सामान्य बनाने के लिए प्रयास करेंगे।
ये थे वात्सल्य राय।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलो हर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलो हर्ट्ज पर।
और अब बात भारत की। नोटबंदी के सरकार के फैसले के शुरुआती दिनों में मची अफरा तफरी से फैल रहे असंतोष का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अब विपक्षी दल एक साथ आकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। बुधवार को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक पहले विपक्षी दलों ने बैठकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग रैलियों में अपने कदम को भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ मजबूत कदम बताते हुए जनता का समर्थन मांग रहे हैं। सुनिए एक रिपोर्ट रोहित जोशी से।
भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ अपने वादों की सीढ़ियां चढ़कर प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठे नरेंद्र मोदी का इस दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम कितना कारगर हो पाता है यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। एक तरफ 500 और 1000 के नोटों के जलाए जाने, फाड़ने और नदी में बहा दिए जाने की खबरें हैं जिन्हें सरकार इस कदम के साकार होने का इशारा बता रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नकदी की कमी ने तकरीबन पूरे देश को बैंकों और ATMs की कतार में ला खड़ा किया है। इससे जो निराशा और असंतोष फैला है कुछ इशारे तो वहां भी हैं। इन इशारों को पकड़ा है विपक्षी दलों ने और सरकार के इस कदम के खिलाफ अब मोर्चा खोलना शुरू किया है। बुधवार को शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए कल हुई सर्वदलीय बैठक के बाद दिल्ली में कांग्रेस, TMC, CPM, RJD, JDU और कई दूसरे विपक्षी दलों ने आगामी रणनीति के लिए बैठक की है। यह बैठक आज भी होनी है। सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है,
अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 10 महीने से इसकी तैयारी हो रही है, तो साफ है बात, 10 महीने से पहले जिन लोगों को जानकारी थी उन लोगों की बचाव हो चुकी है। हमारे पास यहाँ पे सबूत है कि जैसे 8 तारीख को ही अकाउंट नंबर के साथ जैसे बीजेपी की इकाइयाँ हैं अनेक प्रांतों में, अनेक स्टेट्स में, उन्होंने कई करोड़ रुपए की जो जमा किया बैंकों में।
सरकार के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी मोर्चा खोला।
देश की लगभग समस्त आर्थिक गतिविधि व करोड़ों छोटे व मध्यम व्यवसायों को ठप करके यहाँ भारत बंद का जो आयोजन भाजपा सरकार द्वारा किया गया, जैसे हालात अब पैदा हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे भारत बंद हो गया हो।
कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा,
मोदी जी काला धन तो सच में आपके चंद सूट बूट वाले दोस्तों के पास है जो लाइन में खड़े ही नहीं। क्या कारण है कि मोदी जी का कोई उद्योगपति दोस्त, कोई उनकी सरकार का मंत्री, कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री और उनके मंत्री, कोई भाजपाई नेता बैंकों के लाइन में खड़े नहीं, जबकि पूरा देश खड़ा है।
उधर एनडीए की भी एक बैठक हुई है जिसमें घटक दलों ने सरकार के फैसले पर विश्वास जताया है और सहयोग देने की बात कही है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्र सरकार के मंत्री रामविलास पासवान का कहना था,
एनडीए की तरफ से हम लोगों ने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो भी आप कदम उठावे हम एनडीए के लोग आपके साथ में हैं।
यूपी चुनावों के लिए गाजीपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने इस फैसले को जनहित में बताते हुए आलोचना कर रहे विपक्ष और कांग्रेस के खिलाफ तीखे बयान दिए।
इमरजेंसी ला करके इस देश को जेल खाना बना दिया, आपने गरीबों की भलाई के लिए किया था, देश को याद है इलाहाबाद की कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट मेंबर से हटा दिया, कानून हटा दिया, तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गद्दी बचाने के लिए 19 महीने आपने देश को जेल खाना बना दिया। मुझे
कुल मिलाकर विपक्ष ने संकेत दे दिए हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र सरकार की ओर से लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद काफी हंगामे भरा रहना है। रोहित जोशी, बीबीसी, दिल्ली।
और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का आंतरिक संकट एक बार फिर सुर्खियों में आया है। पार्टी से निकाले गए पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मनमाने तरीके से टिकट बांटने के आरोप लगाए हैं। रामगोपाल यादव ने इटावा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को चुनौती दी कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में या तो मौजूदा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें या फिर पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाकर स्थिति को साफ करें। समाजवादी पार्टी के नेता उनकी इस मांग पर कुछ भी कहने को सीधे तौर पर तैयार नहीं दिख रहे हैं। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी से निष्कासन के करीब 2 हफ्ते बाद रामगोपाल यादव ने इटावा में अपनी चुप्पी तोड़ी। पार्टी के कुछ लोगों को जमकर खरी खोटी सुनाई, अखिलेश यादव की जमकर प्रशंसा की और पार्टी में अपने योगदान और त्याग को याद करते हुए रो भी पड़े।
मेरा कोई कभी लालच नहीं था, मैं कभी मंत्री नहीं बनना चाहा। मैं मंत्री बनना चाहता तो न्यूक्लियर डील के वक्त दिल्ली में मंत्री बनता, मैंने नेताजी साहब मना कर दिया कि मैं कभी मिनिस्टर नहीं बनता। तो जब मुझे कुछ नहीं लेना देना है तो मुझे क्या करना है? मेरे ऊपर बेईमानी का आरोप लगे, इससे ज्यादा दुखद बात क्या हो।
रामगोपाल यादव को गत 23 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के सभी पदों और पार्टी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। ऐसा पार्टी में चल रहे राजनीतिक और पारिवारिक संकट के दौरान हुआ था। रामगोपाल यादव ने एक बार फिर अखिलेश यादव को पार्टी की ओर से आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग की।
मुख्यमंत्री को नजरअंदाज करके मनमाने तरीके से टिकटों का वितरण किया जा रहा है। सभी निष्कासित नेताओं को पार्टी में तत्काल वापसी हो, टिकट वितरण में मुख्यमंत्री की सहमति अनिवार्य हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं ये घोषित करें कि विधानसभा का चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। ऐसा न होने की स्थिति में पार्टी का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए जो अंतिम निर्णय करे।
रामगोपाल यादव ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि वो खुद को अभी भी पार्टी का सदस्य मानते हैं। यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने इसी अंदाज में की जैसे कि पार्टी का कोई नेता या प्रवक्ता करता है। कमरे में पार्टी के झंडे लगे थे और पृष्ठभूमि में पार्टी के चुनाव निशान यानी साइकिल की तस्वीरें अंकित थी। रामगोपाल यादव ने जो सवाल उठाए पार्टी के नेता उस पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन निष्कासन के बावजूद रामगोपाल यदि पार्टी के चुनाव निशान का उपयोग कर रहे हैं तो क्या पार्टी ने उस पर संज्ञान लिया है? इस सवाल के जवाब में पार्टी प्रवक्ता जूही सिंह कहती हैं,
रामगोपाल जी मेरे व्यक्तिगत रूप से गुरु रहे हैं, राजनीतिक जीवन मेरे गाइड रहे हैं और समाजवादी पार्टी का संविधान उन्होंने लिखा है। हम सबके लिए ये बहुत ही दुखद प्रकरण है। पार्टी के सिंबल और पार्टी के झंडे पर मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि उनका अपना ही अधिकार है जितना किसी और का है। पार्टी ने अभी इस पर कोई ऑफिशियल संज्ञान नहीं लिया है और मुझे नहीं लगता लेना चाहिए, क्योंकि जो बातें वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का निष्कासन हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस पर दोबारा सोचना चाहिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरी भी आशा है और मैं आपके माध्यम से भी यही अपील करूंगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर जरूर सोचें।
यानी रामगोपाल जो कुछ भी बोल रहे हैं या मांग कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि उसका समर्थन करने वाले पार्टी में ना हो। रामगोपाल अभी तक राज्यसभा में पार्टी के नेता थे लेकिन उनके निष्कासन के बाद वो जगह भी खाली हो गई है। जानकारों की माने तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पार्टी पर रामगोपाल यादव को वापस लेने और उन्हें ही राज्यसभा में नेता पद पर बनाए रखने का दबाव डाल रहे हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
तो उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही हैं, बता रहे थे लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र। और अब वक्त हो चला है अखबारों की समीक्षा का और हमारे साथी वात्सल राय तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वात्सल, आप क्या बता रही हैं सुनने वालों को?
जी, मैं सुनने वालों को ये बता रहा हूँ कि रामगोपाल जी की जो रिपोर्ट अभी समीर जी ने पेश की जिसमें उन्होंने बताया तमाम बातें, लेकिन दिखा नहीं क्योंकि ये रेडियो है और वो आंसू थे जो अखबार वालों ने देखे हैं। और अखबार में टाइम नवभारत टाइम्स समेत कई अखबारों ने लिखा है कि रामगोपाल का दर्द आंसुओं में छलक उठा, यानी वो आंसू निकले थे और पत्रकारों ने उसको देखा है। आज अखबारों में प्रमुखता से इसको दिया गया है। एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा जो देखने वाली थी, कल रात शायद आपने गौर किया हो, सुपर मून की रात थी और वो चांद की जो खूबसूरत तस्वीरें हैं कई अखबारों ने उसको जगह दी है। द हिंदू ने अपने लीड स्पेस में न्यूयॉर्क, बेकानोर, बीजिंग, चेन्नई, 70 साल में ये सुपर मून दिखता है जब 14 गुना चांद बड़ा होता है और ज्यादा चमकदार भी होता है, धरती के करीब होता है।
चांदनी की रात
जी। लेकिन अब रात से दिन हो गई है और दिन के बाद आप जानते हैं आजकल जब भी दिन होता है तो बैंकों और ATM के बाहर लाइनें लगी रहती हैं।
मुझे भी आज जाना है, मेरे पास भी पैसे खत्म हो गए
जी। और जो दिक्कतें हो रही हैं उसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक लाइन सी खिंच गई है। ज़्यादातर अखबारों ने इसको प्रमुखता से छापा है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को हटाने के फैसले को महायज्ञ बताया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को दिया है। उन्होंने नायडू ने कहा है कि अपने फैसले के साथ सरकार खड़ी है और उसे इसको लेकर कोई भी खेद नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस ने ये जानकारी भी दी है कि संसद का जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है उसको लेकर विपक्षी दल, सोमवार को उनकी बैठक हुई और साझा रणनीति बनाने की
बैठक होने वाली
जी, क्योंकि कल वो सहमति नहीं बन पाई थी, आपस में विरोध नजर आ गए थे, अखबार ने ये बताया। स्टेटमेंट्स ने अपनी पहली खबर में जानकारी दी है कि सारी पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने एक साथ आने की अपील की है, खासतौर पर कांग्रेस ने अपील की है सारी पार्टियों से एक साथ आने के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसी खबर को अपने लीड खबर बनाया है और सुर्खी दी है कि लोग बैंकों में जूझ रहे हैं और नेता सदन में संघर्ष के लिए तैयार हो रहे हैं। अखबार के मुताबिक नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से पलटवार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि उन्होंने गरीबों की ओर से बेईमानों पर कार्रवाई की है।
हालांकि जो फिलहाल परेशान दिख रहे हैं, जो मीडिया में, अखबारों में और टेलीविज़न पे जो दिख रहे हैं, जो कतारों में लोग खड़े हैं, वो तो खुद ऐसे दिख रहे हैं कि बेचारे बहुत ही गरीब परिवार के लोग हैं या कम आय वाले वो लोग
जी,
हैं।
उनसे प्रधानमंत्री ने 50 दिन परेशानी सहने के लिए कहा है और उसके बाद कहा है कि जो दंड आप देंगे वो आप दे सकते हैं। द हिंदू ने बताया कि 8 नवंबर को जिस समय प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था नोटबंदी का, उसके बाद मुंबई में 16 करोड़ रुपए की कीमत के सोने चांदी की खरीद हुई। अगर मुंबई, पुणे, नासिक, गोवा की कुल बिक्री को देखा जाए तो वो 36 करोड़ रुपए की थी और इससे एक दिन के पहले की बिक्री का आंकड़ा जो उन्होंने दिया है वो 6 करोड़ था, यानी 6 गुना ये बिक्री में इजाफा हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर में बताया गया है टाटा मोटर्स का बोर्ड टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाए गए जो साइरस मिस्त्री हैं और रतन टाटा के बीच में जो विवाद चल रहा है उससे उसने खुद को दूर किया है और कंपनी के सारे फैसलों को मंजूरी दी है। एक खबर ये भी है कि CBSE ने 10वीं बोर्ड अगले साल से 10वीं के बोर्ड की परीक्षा को दोबारा कराने का फैसला किया है।
वो ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो ग्रेडिंग खत्म होके फिर से दोबारा
खत्म हो रहा है। और चलते चलते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने अपनी खबर में बताया है कि इस सप्ताह के आखिर से मौसम सर्द हो जाएगा और आपको अपने गर्म कपड़े निकालने होंगे।
बहुत शुक्रिया वात्सल आपका अखबारों की समीक्षा के लिए।
सनसनी नहीं विश्वसनीयता का दम
BBC हिंदी।
और अब एक विशेष रिपोर्ट। आज बिरसा मुंडा की जयंती है आदिवासी बहुल राज्य झारखंड के लिए खास दिन। लंबे राज्य आंदोलन के बाद वर्ष 2000 में आज ही के दिन झारखंड एक अलग राज्य के तौर पर उसका गठन हुआ था। पिछले 16 सालों में नए सपनों के साथ शुरू हुए इस राज्य के कई सवाल अब भी बरकरार हैं। BJP की सरकार आज के इस खास दिन समारोह आयोजित कर रही है जबकि विपक्ष ने जन जुटान और संकल्प रैलियां करने का फैसला किया है। रांची से एक रिपोर्ट सुनिए नीरज सिन्हा से।
खूंटी के एक सुदूर गांव के इस बुजुर्ग आदिवासी को अब भी बिरसा मुंडा के लौटने का इंतजार है। बिरसा इसी इलाके के रहने वाले थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान किया था, मतलब क्रांति। आज पूरे राज्य में सरकारी गैर सरकारी स्तर पर बिरसा मुंडा याद किए जाएंगे। दरअसल भौगोलिक और शासनिक तौर पर झारखंड अलग हुआ तो लोगों और खासकर आदिवासियों को इसका इंतजार रहा कि बिरसा के उलगुलान के अंकुर भी लहलहाएंगे। पर क्या तस्वीरें ऐसी हैं? इस सवाल पर एक ग्रामीण युवा,
आज 16 साल पूरा होने जा रहा है झारखंड बना हुआ, इसमें आम आदमी का तो तरक्की नहीं के बराबर हुआ है। किसान आज भी जहाँ के तहाँ खड़े ही है, किसान आज भी लंगोटी पहन के खेत में काम कर रहा है, लेकिन जबरदस्त तरक्की हुई है नेताओं की और अधिकारियों की, क्योंकि जो भी योजनाएं बन रही है उसमें 20% से लेके 25% तक बिना कमीशन का कहीं ग्रामीण स्तर पर काम नहीं चल रहा है।
राजनीतिक अस्थिरता के बीच झारखंड में सबसे अधिक BJP का शासन रहा है और साल 2014 से पूर्ण बहुमत के साथ यहां BJP की ही सरकार है, लिहाजा आज सरकारी स्तर पर बड़े समारोह का आयोजन होना है और राज्य की तरक्की को लेकर सरकार के द्वारा कई घोषणाएं भी की जा सकती हैं। BJP के वरिष्ठ नेता और सरकार के मंत्री राज पालीवार कहते हैं,
जनता के चेहरे पर कैसे मुस्कान आए और समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का कैसे उत्थान हो और अपना झारखंड कैसे एक नंबर का प्रदेश पूरे देश के अंदर बने, इस संकल्प को पूरा करने में रघुवर दास की सरकार की संकल्प है और विश्वास है कि आने वाले 3 वर्षों के अंदर उस लक्ष्य को हम सब प्राप्त कर लेंगे।
पर आदिवासियों की बड़ी आबादी इन बातों पर एतबार नहीं करती।
हमने क्या सोचा था कि झारखंड अलग राज होगा तो हमारा अधिकार मिलेगा, हमारा जो शोषण और समर जो अत्याचार हो रहा था ये बंद होगा, हमको इस राज्य में भूखे मरना नहीं पड़ेगा, हमारा संवैधानिक अधिकार हमको मिलेगा, लेकिन ये सब सपना।
उधर प्रमुख विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज ही जमशेदपुर में सरकार के खिलाफ झारखंडी जन जुटान रैली और जमशेदपुर में ही कांग्रेस ने उलगुलान संकल्प सभा करने का निर्णय लिया है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से झारखंड में जमीन अधिग्रहण की सरकारी कोशिशों और पुलिस फायरिंग की 3 घटनाओं के खिलाफ विपक्षी दलों और आदिवासी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय का कहना है कि सरकारी समारोह में सरकार कथित तौर पर झूठी उपलब्धियां गिनाने के बजाय पुलिस फायरिंग की घटनाओं की जुडिशियल जांच की घोषणा करे।
मीरा और बोधिया भी जिसको हो क्या है दिखाई नहीं दे रहा है उसको चेतावनी देने आए हैं कि 15 तारीख को तीनों गोलीकांड बड़का गांव गोला और छोटी गोलीकांड का लाइव जांच कराओ, ये हम चेतावनी देने आए हैं। 2 दिन पहले तुमको मौका दे रहे हैं कि 15 को घोषित करो, मुआवजा घोषित करो।
गौरतलब है कि अलग राज्य गठन के बाद से राज्य का बजट आकार बढ़ता ही गया है, पर ये हालात क्यों? इस सवाल पर सरकारी योजना, सामाजिक तथा आर्थिक ताना बाना पर पैनी नजर रखने वाले प्रोफेसर रमेश सरन कहते हैं,
देखिए झारखंड जितना आगे जाना चाहिए था उतना तो नहीं जा पाया, क्योंकि जो जितनी चीजें हो सकती थी और जितनी संभावना थी, बजट हम खर्च नहीं कर पाए। खर्च नहीं कर पाने के कई कारण थे, जो हेल्थ इंडिकेटर्स और कुपोषण के इंडिकेटर को उतना इम्प्रूव नहीं कर पाया, और जो यहाँ के मूल सवाल थे, विस्थापन और लैंड एलियनेशन, ये सब सवालों को, पर्यावरण के सवाल को, इन सवालों को हम लोग अभी भी तय नहीं कर पाए। डोमिसाइल का सवाल रहा।
जाहिर है विकास के दावे और विरोध की आवाजों के बीच अलग राज्य गठन के साल जरूर बढ़ते जा रहे हैं। नीरज सिन्हा, बीबीसी रांची।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। श्रीलंका ने कल हरारे में त्रिकोणीय दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 8 विकेट से करारी मात दी। श्रीलंका के सामने जीत के लिए 155 रनों का लक्ष्य था, जो उसने 24.3 ओवर में केवल 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज धनंजय डी सिल्वा 78 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके अलावा निरोशन डिकविलर ने 41 रन बनाए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर जिम्बाब्वे की पूरी टीम 41.3 ओवर में 154 रन पर ढेर हो गई। जिम्बाब्वे के पीटर बूड ने 47 और कप्तान ग्रेम क्रीमर ने 31 रन बनाए। श्रीलंका के असेला गुणरत्ने ने 31 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। उधर होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां आज खेल के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी 2 विकेट पर 121 रन से आगे शुरू करेगा। कल स्टंप के समय उस्मान ख्वाजा 56 और कप्तान स्टीव स्मिथ 18 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर 45 रन बनाकर काइल एबट की गेंद पर बोल्ड हुए, तो उनके जोड़ीदार जो बंस बिना कोई रन बनाए एबट का ही शिकार बने। कल 2 विकेट 79 रन पर खोने के बाद उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ तीसरे विकेट के लिए अभी तक नाबाद 42 रन जोड़ चुके हैं। इससे पहले कल दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट पर 171 रन से आगे खेलना शुरू किया। विंटन डिकॉक ने अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक जमाते हुए 104 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 17 चौके भी लगाए। उनके अलावा तेम्बा बावुमा ने 74 और वर्नोन फिलंडर ने 32 रन बनाए। अंततः दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 326 रनों पर समाप्त हुई और उसे पहली पारी के आधार पर 241 रनों की विशाल बढ़त मिली। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने 89 रन देकर 6 और मिचेल स्टार्क ने 79 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। ऑस्ट्रेलिया अभी भी दक्षिण अफ्रीका से 120 रन पीछे है और उसके 8 विकेट बाकी हैं। उधर भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल रियो ओलंपिक के बाद एक बार फिर से अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं और वो चाइना ओपन में हिस्सा लेंगी। चाइना ओपन में उन्हें चौथी वरीयता दी गई है। महिला एकल वर्ग के पहले दौर में उनका सामना गैर वरीयता हासिल थाईलैंड की पॉन्टिप बुराना परासेर्त सुख से होगा। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता पीवी सिंधु को चाइना ओपन में 7वीं वरीयता दी गई है। महिला एकल वर्ग के पहले दौर में उनका सामना चीन ताइपे की चिया ली से होगा। पुरुष एकल वर्ग में भारत की चुनौती के श्रीकांत, अजय जयराम, एचएस प्रणय और बी साई प्रणीत पेश करेंगे।
और अब सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों का सम्मान करेंगे। ओबामा ने कहा है कि अमरीका दुनिया के लिए शक्ति का स्रोत और उम्मीद की मशाल बने रहना चाहिए। अमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। रूस के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच बराबरी के आधार पर संबंधों को सामान्य करने पर सहमति बनी है। जलवायु परिवर्तन को लेकर अमेरिका के विशेष दूत जोनाथन पर्शिंग ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के पैकेज में दीर्घकालीन विकास की भी जगह होनी चाहिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की एक प्राथमिक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि जांच से मिले सबूतों से लगता है कि साल 2003 और 2004 के बीच अफगानिस्तान में अमरीकी सेना और CIA युद्ध अपराधों में शामिल रहे हों। अमरीका ने अभी इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। इराकी शहर फलुजा में हुए 2 आत्मघाती बम धमाकों में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद कार्यक्रम विश्व भारती में। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।